प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 16 अक्टूबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जनरल स्टडीज का मेंस का जो फर्स्ट पेपर है उसका विश्लेषण कर रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे पिछले ऑडियो में, और इस ऑडियो में मैं उसी कोशिश को अब आगे बढ़ा रहा हूं। पिछली बार के ऑडियो में मैंने टॉपिक वाइज या यूं कह लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि किस किस सेक्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। सच पूछिए तो लगभग विभाजन इसी तरह का हर साल होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जो इनका पारस्परिक अनुपात है लगभग यही बना रहता है। इस अनुपात को देखने के बाद आपको एक बात मुझे लगता है कि डिसाइड कर लेनी चाहिए, और वह यह कि किस किस सेक्टर पर आपको किस किस तरीके से और कितने वजन और विस्तार के साथ तैयारी करनी है। जब मैं कह रहा हूं किस किस तरीके से, तो मेरे कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन क्या एनालिटिकल होते हैं, या सीधे सीधे स्ट्रेट तरीके से ही आपको उनके उत्तर लिखने हैं, या कि उनके बारे में आपको बिल्कुल मौलिक विचार देने हैं, या यह भी हो सकता है कि आपको अपने उत्तर में जो करेंट सिचुएशन है जिसे आप करेंट अफेयर्स कहते हैं उन सबको शामिल करके अपनी बात कहनी हो। तो इस तरीके से जब आप इनके प्रश्नों को देखेंगे तो आपको यह निर्णय करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको किस किस सेक्टर से कितनी तैयारी करनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। थोड़ी सी चर्चा इस ऑडियो में मैं इसी के बारे में करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जहां तक कला का सवाल है हम उसी से शुरू करते हैं। कला से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्यादातर ये वे कलाएं होती हैं जिनका ऑलरेडी इतिहास में उल्लेख होता है। जैसे आप देखिए कि इस बार तो सीधे सीधे जो गांधार की कला है उसके बारे में पूछ लिया गया है, और बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है कि तत्वों को उजागर कीजिए, यानी कि सीधे सीधे आपको एक प्रकार से उनकी विशेषताएं बतानी है। हाँ, विशेषताएं कुछ इस तरीके से बतानी है कि उसमें यह स्पष्ट हो कि यूनानी बैक्ट्रियाई के जो तत्व हैं गांधार कला में वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसका सीधा आंसर आपको किताबों में मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलाओं पर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 साल पहले के प्रश्नों पर चले जाएं तो वे इतने आसान नहीं थे। सच पूछे तो उसमें तो नृत्य वगैरह के बारे में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। उसके बारे में एक प्रकार से तैयारी करना ही मुश्किल है, क्योंकि हम उस सेक्टर में जाकर के तैयारी सामान्यतया करते ही नहीं है। हाँ, अगर किसी का संगीत विषय रहा हो ग्रेजुएशन में या उससे पहले तो फिर वह बात अलग है। इसके बाद है दूसरा सेक्टर संस्कृति को लेकर। संस्कृति को लेकर के जैसा कि मैंने कहा 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सच पूछिए तो ये संख्या काफी अधिक है। 20 में 5 क्वेश्चन, यानी कि सोच करके देखिए कि सीधे सीधे 25% केवल इंडियन कल्चर से है, और इंडियन कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो बड़े बीच के से हैं। बीच के से कहने का मतलब कि जो अभी कला पर मैंने प्रश्न बताया उसके पैरेलल बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, उसी के तरह किस बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिए गए हों, और न ही बहुत ज्यादा जटिल है। जटिल कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। हाँ, समझने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, और समझने के बाद जब आप लिखने की शुरुआत करेंगे तो उस पर भी सोचने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा कि इसमें आप किन किन तत्वों को शामिल करेंगे। तो इस रूप में ही मैंने कहा कि ये थोड़े से बीच बीच वाले क्वेश्चन हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि लगते तो ये ऊपर से सरल ही है, लेकिन सच पूछिए तो उतने सरल भी नहीं है। जैसे क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए 150 शब्दों में। मान करके चलिए कि अगर 150 शब्दों में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह आपके लिए सबसे अधिक सुविधाजनक है, और उसमें आपको बहुत विस्तार वाले बिंदु नहीं लेने हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप केवल उन्हीं पॉइंट्स को लीजिए। तो देखिए, यहां जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है, जो पूछी जा रही है, वो ये कि आप उन तत्वों को बताइए जिसके कारण जो भारतीय संस्कृति है अभी तक बनी हुई है। तो आपको कुछ चीज़ें बड़े आराम से इसमें मालूम हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही एक डेमोक्रेटिक पैटर्न की है। वो सभी को अपने अपने ढंग से अपने अपने देवताओं के को मानने की, उनके स्वरूप का निर्धारण करने की, अपने अपने ढंग से पूजा पाठ संस्कृति, तो हमारे यहाँ इतनी क्षेत्रीयता है, उन सबको इजाज़त देती है। तो जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ तो चीज़ें बहुत लंबे समय तक टिकेंगी। गतिशीलता बहुत ज़्यादा है, समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन करने कि अपनी क्षमता बहुत ज्यादा है, उदार इतनी है, वसुधैव कुटुंबकम की तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम में मिल जाओ, नहीं भी मिल रहे हो तो कोई बात नहीं, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी बना करके रहो, हमारे साथ रहो। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इस तरीके से देखिए, है तो सरल लेकिन लिखते समय बस आपको थोड़ी सी अपनी शब्दावलियों पर ध्यान देना होगा। शब्दावली इस तरह की हो जो इस प्रश्न के उत्तर से फिट बैठ जाती हो, अदरवाइज आप कह लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार से काफी सरल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही भारतीय संस्कृति के बारे में सामान्य तौर पर हम लोग यह सब पढ़ते रहे हैं। अब आप देखिए कि एक दो प्रश्न कुछ थोड़े से आप यूं कह लीजिए कि एनालिसिस की डिमांड करते हैं, एनालिसिस की डिमांड। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली एनालिसिस आपको करना हो। उदाहरण के तौर पर, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। तो देखिए इसमें शब्द है चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस कीजिए। जब हम चर्चा करते हैं तो उसको एग्जामिन नहीं करते, है ना, उनके कारणों पे हम नहीं जाते हैं, बहुत खोद खोद करके हम चीजों के बारे में नहीं बताते हैं। एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि क्या ऐसा है, पूछ कह रहा है कि क्या हम खोते जा रहे हैं। तो पहले तो आपको स्टैंड लेना होगा कि हम खोते जा रहे हैं या नहीं खोते जा रहे हैं, या कुछ खोते जा रहे हैं, सभी में ऐसा नहीं है। जो भी आप स्टैंड लेंगे फिर उस स्टैंड के आधार पर आपको अपनी बात बतानी पड़ेगी। अब यहां देखिए, अपनी स्थानीय पहचान, आपको सबसे पहले स्थानीय पहचान को डिफाइन करना पड़ेगा कि स्थानीय पहचान का मतलब हम एज ए होल इंडियन कल्चर को ले रहे हैं या इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो यूं कह लीजिए कि हमारी जो आंचलिक संस्कृतियां हैं हम उनको ले रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं। लेकिन यहां देखिए, चूंकि वैश्विक संदर्भ में बात हो रही है तो हम आंचलिक अगर संस्कृतियों को लेंगे तो आप कितनों को लेंगे, इतनी सारी संस्कृतियां हैं तो हमें भारतीयता को लेकर चलना होगा। तो यहां स्थानीय शब्द भारतीयता से रिप्लेस हो जाएगा, भारतीयता की हम पहचान खोते जा रहे हैं। तो अब आपको देखना होगा कि वे कौन कौन से तत्व हैं जो वास्तव में बदल रहे हैं और हम इसलिए बदल रहे हैं। देखिए क्या दिया, वैश्विक पहचान के लिए। हमारे अंदर ये छटपटाहट है कि दुनिया हमको पहचाने, दुनिया हमको जाने, और दुनिया हमको जाने इसलिए हम अपनी कुछ चीजों को भूलते जा रहे हैं। क्या आप भाषा के बारे में यह बात कह सकते हैं? क्या आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में यह बात कह सकते हैं? क्या आप हमारे जो खान पान जो हो गए हैं आज के, आप बर्गर पिज्जा ये सब चलने लगे, क्या आप इनके बारे में कह सकते हैं? क्या आप हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो वर्क कल्चर आ गया है, क्या आप उसके बारे में कह सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही इंडिविजुअल टच को महत्व देता है ना, परस्पर संबंधों को महत्व देता है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कल्चर है वो इसको महत्व नहीं देता। तो आप देखिए कि विश्व में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हम अपनी संस्कृति के साथ कौन कौन से समझौते कर रहे हैं। देखिए स्टैंड तो आपको यही लेना होगा कि हाँ ऐसा है, अगर हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो फिर हमें प्रूफ करना मुश्किल होगा। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी तरफ से सोचना होगा और सोच करके कुछ लिखना होगा, और जो लिखना भी है आपको 250 शब्दों में लिखना है, तो बहुत ठोस तरीके से अपनी बात कहनी है। लेकिन अब आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे? देखिए जो इसकी तैयारी है दोस्तों, तो वो सामान्य तौर पर नहीं आती है। आप भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से जान रहे होते हैं, जान रहे होते से हैं से भी ज्यादा सही शब्द होगा कि आप में उसकी समझ है। इसके बाद आप दुनिया को देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, ढेर सारी चीजें आपके सामने हैं जिनसे आप रोजाना गुजर रहे हैं, आप रूबरू हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उनमें से जो कुछ भी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उनमें से अपनी जरूरत की चीजें लाए और यहां उसे जड़ दे, कंस्ट्रक्ट कर दे, इसके आंसर का निर्माण कर दे। तो दोस्तों ये संस्कृति के बारे में बात हुई। अब है भारत का इतिहास। तो देखिए जो भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो सीधे सीधे फ्रीडम मूवमेंट से होते हैं, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एकाद भले ही ऐसे हो, जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हमारे 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो कोई अचानक ही नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले भी कई छोटे छोटे स्थानीय विद्रोह हो चुके थे। तो सामान्यतः इतिहास में बकायदे इस पर चैप्टर हैं, बकायदे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्थानीय विद्रोह, जो खासकर आदिवासियों के विद्रोह थे, उस तरह के विद्रोह हो चुके थे। कुछ पढ़े लिखे लोगों के भी विद्रोह हुए थे, कुछ किसानों के भी विद्रोह हुए थे, खासकर जो टैक्स वसूल किए जाते थे उन सबको लेकर के। तो इस तरह से बहुत से विद्रोह हो चुके थे। तो इसे स्पष्ट करना है, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब आप दूसरे तत्व को देखिए कि जहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसका उत्तर आपको साफ साफ तौर पर नहीं मिलेगा। अब आप देखिए कि वह प्रश्न क्या है। 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। भूमिका का अब आपको आकलन करना है। इंग्लिश में है, एसेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द 1940s। 250 शब्दों में दोस्त, मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर सीधे सीधे कोई चैप्टर है। हाँ, अलग अलग बिखरे हुए जरूर चैप्टर है, इसमें नो डाउट। जैसे क्या कॉम्प्लिकेशन उन्होंने बना दिया, एक तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की ही बात को रख दी, फिर वो संविधान सभा का निर्माण होगा इसको लेकर के प्रॉब्लम होने लगी, जो कैबिनेट मिशन आया उसने अलग तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर दी, फिर उन्होंने बकायदे एक रूल लेकर के आ गए कि जो हमारी रियासतें हैं उनको आजादी इस बात की होगी कि चाहे वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या वो स्वतंत्र रहें। तो इस तरह की चीजें ला ला करके लगातार वो हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनको उलझा रहे थे। चीजें थोड़ी सी सुलझने के करीब आ रही थी तो फिर उलझ जा रही थी। कभी पता लगा कि फिर वो जिन्ना साहब नाराज हो गए, मुस्लिम लीग नाराज हो गया, तो कभी लगा कि जो खासकर जो हिंदू नेता थे, सो कॉल्ड हिंदू नेता कहना चाहिए, हिंदू नेता जैसे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा कि हम जो भारतीय नेता कहें जो खासकर भारत के पक्ष की बात कर रहे थे, उनमें भी कुछ बातों को लेकर के आपस में विरोध हो जा रहा था। जैसे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के देखिए कि किस तरह से बकायदे गांधी जी इसके बिल्कुल विरोध में थे, दूसरे जो लीडर्स थे इसके पक्ष में थे कि क्या करें, अब कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। तो जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पर आपकी इस तरह की पकड़ हो जाएगी तभी जाकर के आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे, अदरवाइज नहीं दे सकेंगे। अब आप किसको लिखेंगे, एक को तो लिख नहीं सकते। तो अब आप देखें कि आपकी भूमिका क्या है। आपको नहीं लगता कि आपकी भूमिका सही मायने में एक मधुमक्खी की भूमिका हो गई है? मधुमक्खी की भूमिका का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत से फूलों पर बैठती है उसमें से फूलों के एक एक कण रस लेती है और उनको फिर एक जगह इकट्ठा करके शहद बनाती है। पता नहीं इसमें से आपने किन किन एक्ट से, किन किन सम्मेलनों से, किन किन बातचीत से क्या क्या तथ्य लिए हैं और उन तथ्यों को इकट्ठा करके फिर उत्तर का एक मधुरस का कलश तैयार कर दिया है। यस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी होती है दोस्तों वह इसी पैटर्न पर होती है। तो कुछ बातें खासकर फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने आप सबसे कही है और मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली आपको आपके अंदर कुछ न कुछ तो तैयारी करने की समझ विकसित हुई ही होगी। और मेरा विश्वास है कि यदि आप इस पैटर्न को लेकर के अपनी तैयारी को स्वरूप देंगे तो निश्चित रूप से आप इसे एंजॉय भी करेंगे और सफलता के करीब भी पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।